श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 3 अनुवाद तात्पर्य द्वारा शतोपाद। इस प्रकार उद्धव ने बाल्यावस्था से ही भगवान की निरंतर सेवा की और वृद्धावस्था में भी उनकी सेवा की वृत्ति में कोई ह्रास नहीं हुआ। जैसे ही उनसे भगवान की वार्ता के विषय में पूछा गया, उनको उनके संबंध में सब कुछ स्मरण हो आया। तात्पर्य, भगवान की दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती, भक्त की सेवा क्रमशः बढ़ती जाती है, यह कभी शिथिल नहीं होती। सामान्यतः वृद्धावस्था आने पर कोई भी व्यक्ति लौकिक सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्राप्त करता है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा में सेवा निवृत्ति नहीं है। इसके विपरीत वयोवृद्धि के साथ साथ सेवा वृत्ति भी अधिकाधिक बढ़ती जाती है, दिव्य सेवा में परितृप्ति नहीं होती, इसलिए उसमें सेवा निवृत्ति भी नहीं होती। लौकिक दृष्टि से जब कोई व्यक्ति 5 भौतिक शरीर से सेवा करते हुए थक जाता है तो उसे सेवा निवृत्ति होने की अनुमति मिल जाती है। दिव्य सेवा में थकावट होती ही नहीं, क्योंकि वह आध्यात्मिक सेवा है जिसका धरातल शारीरिक नहीं है। शारीरिक धरातल की सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती, इसलिए आध्यात्मिक धरातल की सेवा कभी भ्रांतिकारक नहीं होती। उद्धव निश्चय ही वृद्ध हो गए थे, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उनकी आत्मा भी वृद्ध हो गई थी। उनकी सेवा वृत्ति दिव्य भूमिका पर परिपक्व हो गई थी। इसलिए जैसे ही विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछे, उनको तत्काल अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक संदर्भ के प्रसंगों का स्मरण हो आया और शारीरिक धरातल पर वे अपने को भूल गए। भगवान की विशुद्ध भक्ति का यही लक्षण है, जिसकी व्याख्या लक्षणम भक्ति योगस्य श्री कपिल देव द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए उपदेशों के प्रसंग में की जाएगी। इस प्रकार उद्धव ने बाल्यावस्था से ही भगवान की निरंतर सेवा की और वृद्धावस्था में भी उनकी सेवा की वृत्ति में कोई ह्रास नहीं हुआ। जैसे ही उनसे भगवान की वार्ता के विषय में पूछा गया, उनको उनके संबंध में सब कुछ स्मरण हुआ है। यहाँ उद्धव जी के वृत्तांत से एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इस श्लोक में वर्णित हो रहा है कि उद्धव जी बाल्यावस्था से ही भगवान की निरंतर सेवा करते आए, जिसका वर्णन हमने पिछले श्लोक में देखा कि 5 वर्ष के ही थे तब से ही स्वाभाविक रूप से उनको भगवान के प्रति भक्ति भाव था, और अभी वो वृद्धावस्था में हैं जब उनको विदुर मिले हैं और विदुर उनसे पूछते हैं भगवान के विषय में, तो अभी उद्धव जी को भगवान का कीर्तन करने का अवसर या प्रार्थना कर रहे हैं विदुर जी, तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम से प्रारंभ होने वाली नवविधा भक्ति में कीर्तनम एक मुख्य अंग है। वास्तव में कीर्तन जो है वो जीव का वो मूल धर्म है, भगवान का कीर्ति का गान करना। श्रवणम जो है वो कीर्तन के लिए तैयारी है। इस प्रकार से भक्ति के अलग अलग अंग हैं। तो जैसे ही उद्धव जी को भगवान के विषय में कीर्तन करने के लिए मौका मिलता है तो वो पूरे उल्लासित हो जाते हैं, तो इससे ये प्रतीत होता है कि अपनी वृद्धावस्था में भी उद्धव जी की जो वृत्ति है भगवान की सेवा करने की, उसमें कोई ह्रास नहीं हुआ। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये भिन्नता है लौकिक सेवा में और दिव्य सेवा में। जो लौकिक सेवा है उसके अंदर भौतिक कारणों से, क्योंकि वो भौतिक धरातल पर होती है, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, लेकिन दिव्य सेवा क्योंकि भौतिक धरातल पर नहीं होती है, आध्यात्मिक धरातल पर होती है और आध्यात्मिक वस्तु का कभी ह्रास नहीं होता है, इसीलिए उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए शुद्ध भक्ति की सेवा की परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है, सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो जो शुद्ध भक्ति है वो अप्रतिहता होती है, उसके अंदर कभी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकता, जबकि भौतिक सेवाओं में किसी ना किसी कारण से विघ्न आते रहते हैं। जैसे भौतिक जगत में जो सेवाएं हैं, तो जो सेवा करने वाला व्यक्ति है तो वो भौतिक शरीर के माध्यम से सेवा होती है, और भौतिक शरीर का धीरे धीरे समय के अनुसार ह्रास होता है, तो इसलिए इस कारण से सेवा में विघ्न आ सकता है। जैसे हम देखते हैं कि शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा होने की वजह से रिटायरमेंट होता है गवर्नमेंट जॉब में सब, या गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो भी व्यक्ति बिजनेसमैन है तो कब तक बिजनेस करेंगे, कुछ समय बाद निवृत्ति लेनी ही पड़ती है, तो निवृत्ति लेनी पड़ती है क्योंकि शरीर अभी काम नहीं कर रहा है, जो सेवा का जो करने का जो माध्यम है वो खत्म क्षीण होता जाता है, तो ये कारण होता है। फिर दूसरा, मन में जो सेवा की वृत्ति है वो बदल जाती है। जैसे कोई व्यक्ति आज किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, किसी की सेवा कर रहा है, किसी बॉस की, कुछ समय बाद वो अपना जॉब चेंज करके किसी दूसरे की सेवा करने लगता है, तो जो सेवा का जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम परिवर्तन कर देते हैं, तो इस प्रकार से सेवा चेंज हो जाती है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो हमारी जो वृत्ति थी सेवा की कि हमें इसकी सेवा करनी है, तो जिस हेतु से हम सेवा कर रहे थे भौतिक धरातल पर कि हमें उससे कुछ लाभ होगा, कुछ पैसे मिलेंगे, तो जो हमें लगता है कि नहीं अभी मेरा जो हेतु है वो यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, अभी यहाँ मुझे कम पैसे मिल रहे हैं जितने मुझे चाहिए या दूसरी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो हम वो सेवा का जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको बदल देते हैं, तो ये वजह से अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक धरातल पर जो भी सेवा होती है वो कभी भी सतत नहीं चलती है, वो हमेशा उसमें विघ्न आता है और वो बंद हो जाती है, वो टेम्प्रेरी है, और यही भौतिक जगत का लक्षण है, भौतिक हर वस्तु का लक्षण है कि वो टेम्प्रेरी होती है। लेकिन इसके विपरीत जो भगवान के प्रति जो सेवा का संबंध स्थापित होता है वो कुछ समय के लिए कृत्रिम रूप से ढक सकता है। जैसे वर्तमान समय में हमारा संबंध भगवान के साथ कुछ समय के लिए ढका हुआ है, लेकिन वो कभी भी उसकी जो नित्यता है, उसकी जो भगवान के साथ जो सेवा का संबंध है वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जैसे ही वो पुनर्स्मृत होता है, उसका पुनर्स्मरण होता है, तुरंत वही चीज जो पहले हम अनुभव कर रहे थे वो तुरंत ताजा हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। तो जैसे भगवान की सेवा के विषय में पूछा तो तुरंत उनको वही स्मरण हो गया और वही पहुंच गए, उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, उसी प्रकार की ताजगी अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार के प्रेमाश्रु और अन्य लक्षण उनके शरीर में प्रकट होने लगे, उद्धव जी के शरीर में। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है भक्ति सेवा का, जो हम सब अनुभव कर सकते हैं कि जब जब हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं तब तब हमें वैसा ही फ्रेशनेस प्रतीत होती है भगवान की सेवा में। लेकिन अन्य किसी भी धरातल पर, यानी भौतिक धरातल पर किसी भी अन्य सेवा में धीरे धीरे जो चार्म है, जो सेवा से मिलने वाला रस है, उसमें ह्रास होता रहता है। लेकिन जब जब हम कृष्ण भावनामृत में रह करके भगवान की सेवा करते हैं तब तब हम हमेशा फ्रेश अनुभव करते हैं। जैसे कि यामुनाचार्य बोलते हैं, यद यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदयो नव नव रस तामनी। तो जब से मैं भगवान की सेवा में प्रयोजित हुआ हूँ तब से मुझे नए नए रसों का आस्वादन मैं करता हूँ। तो ये बहुत एक फीचर है, डिस्टिंक्टिव फीचर है, भेद करने वाला फीचर है लौकिक और आध्यात्मिक में। तो भगवान नव यौवनम है, और भगवान के जो संपर्क में आते हैं, उनकी जो सेवा में आते हैं, उसमें भी हमेशा नया नया रस प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्ति के सागर को आनंदाम बुद्धि वर्धनम कहा गया है। वो सागर है, सामान्य रूप से सागर का हमारा अनुभव क्या है, सागर कभी बढ़ता नहीं है, सागर अपनी सीमाओं में सीमित रहता है, नदी बढ़ती है, नदी में उफान आता है, लेकिन सागर की जो सीमा है वो उसको निर्दिष्ट होती है, यही सीमा है, एक्सेप्ट जब ज्वार भाटा आए तो उसकी जो लिमिट्स हैं वो हमेशा रहती हैं। लेकिन भगवान की सेवा में मिलने वाला जो आनंद है, रस है, वो कभी भी शिथिल नहीं होता है, इसलिए उसमें कभी भी बोर्डम नहीं होती है। तो यदि हमें भक्ति के जीवन में यदि कभी किसी सेवा में शिथिलता अनुभव हो रही है तो उसका कारण है कि हम कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारी अपरिपक्वता का लक्षण है। अन्यथा जो उन्नत भक्त हैं उनके जीवन से हम देखते हैं कि उनकी जो सेवा वृत्ति है और एंडेवर है उसमें कोई कमी नहीं होती। जैसे इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं श्री प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी तो वयोवृद्ध थे जब अमेरिका में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, लेकिन प्रभुपाद जी के उत्साह और उनका सेवा के सामने उनके नव युवक शिष्य जो अमेरिकन जो बहुत ही अच्छे शरीर वाले थे, हष्ट पुष्ट, वो भी उनका उनके सामने नहीं टिक पाते थे प्रभुपाद जी के सामने। तो प्रभुपाद जी एक इंटरव्यू में ये बात हो रही थी, एक भक्त पूछता है, एक इंटरव्यूअर पूछता है, तो क्या स्पिरिचुअल आपकी लाइफ है, इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि आप धीरे धीरे शिथिल होते जाते हैं, वो धीरे धीरे बोरिंग होने लगता है? प्रभुपाद जी बोले, कैसे, देखो मैं उन सबसे ज़्यादा सेवा करता हूँ, मैं दिन में केवल 4 घंटे ही सोता हूँ, तो मैं तो वयोवृद्ध हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बोलते हैं आई डोंट लाइक टू स्लीप, मुझे सोना अच्छा नहीं लगता है। तो ये लक्षण है भक्त का कि भक्त को सोना अच्छा नहीं लगता है, भक्त को समय व्यर्थ करना अच्छा लगता है। तो ये कैसे संभव है यदि ये लौकिक होगा? तो लौकिक में रस जो है वो स्थिर नहीं रह सकता, कुछ समय कर रहेगा लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें, जैसे भगवान बताते हैं भगवद गीता में, प्रत्यक्ष आवगमन धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति जो है वो प्रत्यक्ष आवगमन है, वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सक की जा सकती है, और उसके विशिष्ट लक्षण होते हैं जिससे वो प्रकाशित होती है, लक्षणम भक्ति योगस्य। तो सामान्य रूप से जो व्यक्ति भक्ति योग से के नियमों से परिचित नहीं है, उसमें उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसे बाह्य रूप से देखने लगेगा कि लौकिक में और आध्यात्मिक में कोई अंतर नहीं है, उसे ऐसा लगेगा। एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा है था कि आप में और हम में कोई फर्क नहीं दिखता है, आप भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और ऐसे ही कुछ कुछ मंदिर में कुछ काम करते हैं, और हम भी ऐसे अपने जॉब में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम में और आप में कुछ अंतर दिखाई देता है? आप भी ऐसे काम करते हैं पूरा दिन भर, क्योंकि लोग सामान्य में सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन का मतलब है जब लोग काम करना बंद कर दें, रिटायरमेंट, ऐसा सोचते हैं, ऐसा है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब काम करना बंद कर। तो जब वो देखते हैं भक्तों को काम करते हुए बहुत अच्छे से सुबह से शाम तक काम करते, तो उनको लगता है इससे क्या फ़ायदा हुआ, फिर ये काम तो हम भी कर रहे हैं, पूरा दिन रात काम कर रहे हैं, तो आप भी पूरा दिन रात ऐसे मेहनत कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपका आध्यात्मिक जीवन में आने से? तो उनको आश्चर्य होता है कि क्यों, फिर क्या फ़ायदा है, आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है, आप भी सुबह दौड़ धाम कर रहे हैं, भाग रहे इधर। तो सामान्य रूप से बाह्य रूप से देखने में अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि अंतर क्या है लौकिक और आध्यात्मिक में, क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है, केंद्र क्या है अंतर का, वो है चेतना का अंतर। कृष्ण भावनामृत, भावनामृत, कृष्ण भावनामृत भावना का अंतर है। एक आध्यात्मिक जीवन मतलब कृष्णमय होकर के कार्य करना, कृष्ण कृष्ण की भाव, कृष्ण की सेवा की भावना से कार्य करना, और लौकिक है स्व इंद्रियों की सेवा की भावना से कार्य करना। तो सामान्य रूप से इस भावना को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको जज करने के लिए भी प्रशिक्षण चाहिए। दूर से ये पता नहीं लगेगा कि भावना में अंतर है कि नहीं, जैसे गोपियाँ, तो सामान्य व्यक्ति को लगेगा गोपियों और कृष्ण का संबंध और सामान्य स्त्री पुरुष का संबंध एक सही है, दोनों की चेतना तो एक सी ही है। तो लेकिन जो भक्ति में परिणित हैं, जो आगे प्रगति कर रहे हैं, वो खुद अपने एक्सपीरियंस से और शास्त्रों के मार्गदर्शन से देख सकते हैं कि वो व्यक्ति, वो भक्त किस स्तर पे कार्य कर रहा है। जब हम खुद उसको प्रैक्टिस करते हैं उस चीज को, तब हम समझ सकते हैं एक उन्नत भक्त और एक कनिष्ठ भक्त में अंतर। इसलिए जो भेद करने की जो समझ है जिस व्यक्ति में होती है, जिस भक्त में होती है, उसे मध्यम अधिकारी भक्त कहा जाता है। एक कनिष्ठ अधिकारी केवल भगवान के अर्च विग्रह तक ही उसकी श्रद्धा होती है, वो भक्तों के अलग अलग स्तरों को नहीं देख सकता है कि कौन उन्नत है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है, ये बुद्धि उसके अंदर नहीं होती है। और वो इस प्रकार से इसलिए भक्तों का समुचित सम्मान नहीं कर सकता, कर पाता है, क्योंकि वो सोचता है बस मैं और भगवान, भक्तों का महत्व तो उसको विदित नहीं होता है। लेकिन जब भक्त मध्यम स्तर पहुंचता है तो वो जान सकता है कौन व्यक्ति कनिष्ठ स्तर पे है, कौन मध्यम स्तर पे है और कौन उत्तम स्तर पे है। और इसलिए जान लेने पर वो उनसे यथोचित ताल संबंध स्थापित कर पाता है। तो बालिशु जो नवागंतुक हैं उन पर कृपा करता है, जो समक्ष हैं, जो उसके समान हैं, उसके स्तर के आसपास में हैं, उनसे मैत्री भाव रखता है, और जो उन्नत भक्त हैं उनकी सेवा करता है, और इस प्रकार से वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है। तो भक्ति में और भौतिक में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आध्यात्मिक समझ की कुछ स्तर होना चाहिए, नहीं तो वो भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो भक्त की परख होती है, सामान्य व्यक्ति को भी भक्तों का की भक्ति का परिचय होता है ऐसे मौकों पर, ऐसे समय पर जब भक्तों की परीक्षा होती है। परीक्षा से परखा, किसी भी चीज की परख होती है परीक्षा से। जैसे व्यक्ति बच्चा पूरे साल पढ़ता है लेकिन पढ़ा के नहीं पढ़ा इसका पता लगता है परीक्षा से, परीक्षा के परिणाम से पता लगेगा कि पढ़ा के नहीं पढ़ने, तो पूरे साल सब लोग क्लास में जा रहे हैं, सबकी अटेंडेंस है, लेकिन उसने सीखा कि नहीं सीखा यह पता लगेगा परीक्षा से, इसलिए परीक्षा होती है। तो इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में हमारी परीक्षा से पता लगता है कि हमारी प्रगति कितनी हो रही है। तो जैसे ब्राह्मण कृष्ण लीला में वो यज्ञ कर रहे हैं तो बाह्य रूप से रहेगा ओहो ये कितने प्रगत हैं, बड़े कठिन नियम पालन कर रहे हैं और सभी प्रकार के यज्ञ, बड़े शास्त्रों में बड़े पंडित हैं, शास्त्रों को जानते हैं, और उनके विपरीत उनकी पत्नियां हैं जो सामान्य स्त्रियां हैं, घर के काम कर रही हैं, तो सामान्य दृष्टि से देखेगा कि ये अधिक प्रगत हैं, लेकिन जब परीक्षा हुई तो वो फेल हो गए और जो उनकी पत्नियां हैं वो पास हो गई। परीक्षा क्या हुई कि कृष्ण बलराम के लिए खाना लेने के लिए, मांगने के लिए आए उनके मित्र, तो जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं तो वो बोले नहीं अभी तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ, अभी कैसे दे सकते हैं हम। लेकिन जो पत्नियां हैं उनकी, वो ये कृष्ण बलराम जिनके लिए यज्ञ हो रहा है वही है, तो जब जो मांग रहे हैं तो उनको नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे, तो तुरंत उनको सब भिजवा दिया। उसी प्रकार से जब गोपियों से, जब भगवान वो सिर दर्द तो कहा कि भक्तों की चरण रज चाहिए, तो तब सब भक्तों ने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा होने पर तो हम नरक में जाएंगे, लेकिन गोपियों ने कहा कि हाँ ले जाइए नारद मुनि को। नारद मुनि को याद दिलाया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं कि ये, तुम जानते हो कि तुम नरक जाना पड़ेगा, फिर भी तुम चरण रज देने को तैयार हो। तो उस परीक्षा से पता लगा हाँ क्या होगा, नरक जाएंगे तो क्या हुआ, भगवान के नरक जाएंगे, उससे और सुख की बात क्या हो सकती है, नरक जाएंगे। तो ऐसी परीक्षा में पता लग गया कि कौन भक्त है। ऐसे ही बलि महाराज परीक्षा हो गई कि शुक्राचार्य कह रहे हैं अरे भाई ये विष्णु हैं, तुमको ठगने के लिए आए हैं, और तुम ये तीन पाद जमीन के अंदर, तुमको सब, तुम्हारा साम्राज्य सब कुछ छीन लेंगे, इसलिए तुम समझो और उनको ये मत दो। लेकिन बलि महाराज भक्त थे, वहाँ परीक्षा हुई तो वहाँ बोले अच्छा अगर विष्णु कुछ मांगने आए तो इससे अच्छी और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है, यदि भगवान हमसे कुछ मांगने आए तो इससे बहुत अच्छा ले लो। तो ऐसी परीक्षा के माध्यम से ही पता लगता है भक्तों में और अभक्तों में अंतर। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, तो वो परीक्षाएं होती हैं सामान्य जन को सिखाने के लिए कि भक्ति का मतलब क्या है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि भक्ति क्या हो सकता है। हम भी तो भक्त हैं, सब अपने को बड़ा भक्त मानते हैं, हम भी तो भक्त हैं, क्या अंतर है तुम्हें, हम भी तो बड़े भक्त हैं। लेकिन जब परीक्षा होती है तब पता लगता है। तो जैसे हम एक कल पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक जो गृहिणी है वो अपनी लड़की को शिक्षा देती है, पुत्र वधू को शिक्षा दे करके, डायरेक्ट उसको शिक्षा नहीं देती है पुत्र वधू को, सॉरी उल्टा हो गया, पुत्र वधू को शिक्षा देती है अपनी लड़की को, कन्या को शिक्षा दे करके, क्योंकि पुत्र वधू दूसरे घर से आई है तो उसको प्रताड़न करना है वो ठीक नहीं, तो उसको सिखाएगी लेकिन अपनी लड़की को डांटेगी, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, ये ऐसा करना चाहिए ना, सिखा रही है पुत्र वधू को लेकिन माध्यम है अपनी पुत्री। तो उसी प्रकार से भगवान सामान्य जन को सिखाते हैं भक्तों के माध्यम से। भगवद्गीता सिखाया सबके लिए, अर्जुन के लिए भगवद्गीता नहीं था, अर्जुन तो पहले से ही भक्त था, लेकिन सिखाया अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को विस्मृत किया, अर्जुन को भ्रम में डाले और उनके माध्यम से पूरे जगत को सिखाया। पांडवों को इतना सब कष्ट सहन करना पड़ा, तो क्या पांडव अपने पूर्व जन्मों के पाप को सहन कर वहन कर रहे थे? नहीं। तो जब भीष्म पितामह के सामने युधिष्ठिर महाराज बड़े भारी हृदय से आए कि मैंने कितने पाप किए होंगे कि ये सब मुझे देखना पड़ रहा है, बहुत उनका हृदय भारी था, किसी के समझाने से समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ये क्या हुआ, उनको लग रहा था कि मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं जिसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है और अभी और पाप कर्म किए हैं इसका कब तक भुगतना पड़ेगा। लेकिन भीष्म पितामह उनको बताए कि आप ऐसा मत समझो कि ये पाप कर्म की वजह से हो रहा है, ये भगवान की इच्छा की वजह से हो रहा है। तो शुद्ध भक्तों के जीवन में जो कार्य होते हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपके संबंधी हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। किसी जिसने पूर्व जन्म में पाप किए हो, जिसके पाप कर्म का फल बचा हुआ हो, उसके उसके भगवान संबंधी कैसे बन सकते हैं? तो भगवान उसके संबंधी नहीं बन सकते हैं, तो वो पाप कर्म का नहीं है, लेकिन भगवान आपके माध्यम से संसार को सिखाना चाह रहे हैं। तो भगवान का हेतु था कि धर्मराज युधिष्ठिर स्थापित हो राज्य करने के लिए, लेकिन भगवान के इस मिशन को पूरा करने के लिए भगवान के भक्तों को कुछ कष्ट भोगने पड़े, उनको अपने स्वजनों को मारना पड़ा, युद्ध देखना पड़ा, खून देखना पड़ा, ये सब रुचिकर चीज नहीं है। लेकिन भगवान की मिशन के अंदर अरुचिकर जो चीज़ें होती हैं उसे भी भगवान के भक्त ही सहन कर सकते हैं, इसलिए भगवान के भक्त माध्यम बनते हैं भगवान की इच्छाओं के स्थापित होने में, शिक्षण के लिए, सामान्य जन के शिक्षण के लिए। और इसी प्रकार से भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं दुर्योधन के साथ, क्यों? भगवान की इच्छा की, कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो लेकिन यदि वो अधर्म का सहारा लेगा तो वो सफल नहीं होगा। तो भीष्म पितामह ऐसे पराक्रमी थे कि उनके समक्ष कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन भगवान ने अपने भक्त को के उदाहरण से दिखाया कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन यदि वो भगवान के विरुद्ध जाएगा तो वो परास्त होगा। तो अभी ये दिखाने के लिए भगवान ने अपने ही भक्तों को यूज किया, क्योंकि भगवान के भक्त ही यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी परीक्षाएं भक्तों के भक्त उसमें ऐसे गुजरते हैं, तब पता लगता है कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है, किसकी भक्ति कितनी है। तो इस प्रकार से भक्ति के विशिष्ट लक्षणों से हम पता लगा सकते हैं कि भक्ति क्या है, और इन लक्षणों को हमें जानना चाहिए। तो लक्षण सामान्य मुख्य लक्षण है कि भक्ति परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र स्यात्। तो विरक्ति होती है भौतिक जगत में भोग से और भगवान के सेवा में आसक्ति होती है। तो भक्ति सेवा लौकिक नहीं है, क्योंकि उसका मुख्य लक्षण है कि वो दिन प्रतिदिन वो वृत्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वृद्धि होने पर और अधिक उत्साह होता है भगवान की सेवा करने। तो हम देखते हैं श्री प्रभुपाद या जो भगवान के महान भक्त हैं वो वृद्ध होने पर जवान लोगों से अधिक सेवा करते हैं और अधिक उत्साही होते हैं सेवा करने के लिए। तो ये दिखाता है कि भक्ति लौकिक नहीं है, और ये केवल तभी संभव है जब वास्तव में भगवान और केवल भगवान और जीव के बीच में जब ये सेवा का संबंध हो तभी ये दिव्यता संभव है, अन्यथा नहीं है। आप किसी बनाए हुए भगवान की सेवा करके देख लीजिए नहीं टिकेगा। केवल कृष्ण वो व्यक्ति की सेवा होगी तो ही वो टिकेगा, नहीं तो नहीं, ये लक्षण नहीं प्रस्तुत होंगे। इसलिए ये वैज्ञानिक है भक्ति, इसके विशिष्ट लक्षण, ये वेरीफाइबल है, ये वेरीफाइड हो सकती है, इसलिए मनगढ़ंत नहीं है। ये दिखाता है कि भक्ति एग्जिस्ट, कृष्ण एग्जिस्ट, भगवान है, उनकी भक्ति। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? ग्रंथाश्रम भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।